लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, अमानवीय जीवन परिस्थितियों में हाशिए पर जीवन यापन करने वालों के लिए हम आपसे याचना करते हैं, ताकि सरकारी, गैर सरकारी और कलीसियाई संस्थाओं द्वारा उनकी अनदेखी न की जाए और न ही उन्हें कम महत्व का समझा जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेट्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 24 सितंबर को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने दाख बारी में काम करने वाले मजदूरों के दृष्टांत पर चिंतन किया तथा जोर दिया कि ईश्वर का प्रेम मनुष्यों की न्याय एवं निष्पक्षता की धारणाओं से ऊपर है। पोप ने विश्वासियों को संबोधित कर कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta una parabola sorprendente. Il padrone di una vigna esce alle prime ore dell'alba fino a sera per chiamare alcuni operai.
आज का सुसमाचार पाठ एक आश्चर्यजनक दृष्टांत प्रस्तुत करता है। एक अंगूर के बगीचे का मालिक सुबह से लेकर शाम तक श्रमिकों को बुलाने के लिए बाहर जाता है, लेकिन अंत में वह सभी को एक समान मजदूरी देता है, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जिन्होंने केवल एक घंटा काम किया था। संत पापा ने कहा कि यह अन्याय के समान लग सकता है, लेकिन दृष्टांत को मजदूरी के मापदंड के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ईश्वर के मापदंड के रूप में देखना चाहिए, जो हमारी योग्यता का हिसाब नहीं रखते, लेकिन हमें अपने बच्चों के समान प्यार करते हैं। कहानी में निहित ईश्वर के दो कार्यों पर प्रकाश डालते हुए संत पापा ने कहा, पहला, ईश्वर हर एक घंटा हमें बुलाने के लिए बाहर जाते हैं, और दूसरा, सभी को समान मजदूरी देते हैं। दृष्टांत बतलाता है कि स्वामी अपनी दाख बारी में काम कराने हेतु मजदूरों को खोजने के लिए बड़े सवेरे बाहर निकले, लेकिन बाद में वे सूरज डूबने तक कई बार मजदूरों को खोजने के लिए निकले और बेकार खड़े मजदूरों को काम में लगाया। इस तरह हम दृष्टांत से समझ सकते हैं कि ईश्वर अथक रूप से हर रोज हमारी खोज में बाहर निकलते हैं। वे हमारे पास आने के लिए हमारे प्रयास की प्रतीक्षा नहीं करते। वे हमारी योग्यता की जांच करने के लिए पहले इम्तिहान नहीं लेते, ना ही हमारी ओर से उत्तर देने में देरी होने पर छोड़ देते। उन्होंने खुद पहल किया है और यीशु हमारे पास बाहर आए, हमें अपना प्यार दिखाया और वे हमें हर घड़ी खोजते हैं। जैसा कि ग्रेगोरी महान विभिन्न चरणों में प्रस्तुत करते हैं कि वे हमारे जीवन के बुढ़ापे तक हमें खोजते हैं, उनके हृदय के लिए कभी देर नहीं होती। संत पापा ने जोर देकर कहा, आइए हम इसे ना भूलें, वे हमेशा हमारी खोज करते और हमारी प्रतीक्षा करते हैं। ईश्वर का दूसरा कार्य है कि वे हरेक को समान मजदूरी देते हैं। यहाँ दृष्टांत का असली अर्थ है कि अंतिम घड़ी में आने वाले मजदूर भी पहले काम पर लगाए जाने वाले मजदूरों के बराबर वेतन पाते हैं, क्योंकि ईश्वर का न्याय उच्च है, वह आगे जाता है। मनुष्य का न्याय हर एक व्यक्ति को उतना ही देने के लिए कहता है जितनी उनकी योग्यता है, जबकि ईश्वर का न्याय उनके प्रेम का बदला देने, प्रदर्शन या हमारी विफलताओं के तराजू पर मापने में नहीं है। ईश्वर सिर्फ हमें प्यार करते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, और वे ऐसा बेशर्त प्यार से करते हैं, मुफ्त में दिए गए प्यार से। संत पापा ने सचेत करते हुए कहा, कभी कभी हम ईश्वर के साथ व्यापारिक रिश्ते रखते हैं, उनकी कृपा की उदारता पर नहीं बल्कि अपने कौशल पर ध्यान देते हैं। कई बार कलीसिया में भी ऐसा होता है। कि हर घड़ी बाहर जाने और अपनी बाहें सभी लोगों के लिए फैलाने के बदले हम क्लास में प्रथम दर्जा पाने के समान महसूस करते हैं और दूसरों को दूर आंकते हैं, इस बात पर गौर किए बिना कि ईश्वर उन्हें भी हमारे ही समान प्यार करते हैं। और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों में जो समाज का ताना बाना है, जिस न्याय का हम अभ्यास करते वह कभी कभी गिनती के पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाता और हम जो प्राप्त करते हैं उसी के अनुसार देने तक सीमित रहते हैं। अतिरिक्त प्रयास किए बिना खुले हृदय से किए गए अच्छे काम और उदार हृदय से दिए गए प्यार की प्रभावशीलता पर भरोसा किए बिना। तत्पश्चात संत पापा ने चिंतन हेतु प्रेरित करते हुए कहा, हम अपने आप से पूछें, क्या मैं एक ख्रिस्ते बाहर निकलकर दूसरों तक पहुंचना जानता हूं? क्या मैं सभी के प्रति उदार हूं? क्या मैं अतिरिक्त समझदारी रखना और क्षमा करना जानता हूं, जैसा कि यीशु ने किया और हर एक दिन हमारे साथ करते हैं? तब माता मरियम से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, माता मरियम, हमें ईश्वर के बेहिसाब प्रेम की माप में बदलने में मदद करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Dominus, Ave Maria.
Et concepite de Spirito Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विश्व अप्रवासी एवं शरणार्थी दिवस की याद की। विश्व अप्रवासी एवं शरणार्थी दिवस की विषय वस्तु है पलायन करने या नहीं करने के चुनाव के लिए स्वतंत्र। संत पापा ने कहा, वास्तव में पलायन का अधिकार अब कई लोगों के लिए एक दायित्व बन गया है, जबकि पलायन न करने अपने ही देश में रहने का अधिकार बना रहना चाहिए। प्रत्येक पुरुष और महिला को उस समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार की गारंटी दी जानी चाहिए जिसमें वे खुद को पाते हैं। दुर्भाग्य से गरीबी, युद्ध और जलवायु परिवर्तन कई लोगों को भागने के लिए मजबूर करते हैं। अतः हम सभी को चाहिए कि हम एक ऐसा समुदाय बनाएं जो अप्रवासियों का स्वागत करने, उन्हें बढ़ावा देने और जो हमारे द्वार पर दस्तक देते हैं उन्हें एकीकृत करने के लिए तैयार हो। संत पापा ने मार्सिले की अपनी यात्रा की याद करते हुए कहा, यह चुनौती भूमध्य सागरी सभा के केंद्र में था जो पिछले दिनों मार्सिले में संपन्न हुआ और जिसके समापन सत्र में मैंने भाग लिया। उसके बाद संत पापा ने अप्रवासी भाई बहनों की मदद करने के लिए इताली कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलन को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। तत्पश्चात संत पापा ने प्रांगण में उपस्थित सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का अभिवादन करते हुए कहा,
Saluto tutti voi, romani, pellegrini d'Italia e di tanti paesi.
मैं रोम तथा इटली एवं विश्व के विभिन्न देशों से एकत्रित आप सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन करता हूँ। फिर उन्होंने एटैक्सिया नामक दुर्लभ बीमारी से प्रभावित लोगों और उनके परिवार के सदस्यों का अभिवादन किया। उसके बाद संत पापा ने सिनोडल महासभा के पूर्व जागरण प्रार्थना में भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा,
Rinnovo l'invito a partecipare alla veglia ecumenica di preghiera.
मैं ख्रिस्ती एकता जागरण प्रार्थना में भाग लेने का निमंत्रण दोहराता हूँ जिसका शीर्षक है एक साथ, जो अगले शनिवार 30 सितंबर को 4 अक्टूबर से शुरू होने वाले सिनोडल महासभा की तैयारी में संत पेत्रुस महागिरजाघर में की जाएगी। और अंत में संत पापा ने यूक्रेन के पीड़ित लोगों के लिए एवं अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिए गए संत पापा के संदेश को सुन रहे थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस मार्सिले की अपनी दो दिवसीय प्रेरितिक यात्रा की समाप्ति के बाद शनिवार शाम को रोम लौट आए। विमान में वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मतेव ब्रूनी ने संत पापा फ्रांसिस का स्वागत किया और परंपरा को बरकरार रखते हुए विमान में सवार पत्रकारों से संत पापा से प्रश्न पूछने हेतु आमंत्रित किया। संत पापा ने विमान में उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन किया। संत पापा ने कहा, आज रोबर्टो बेलिनो संचार विभाग के साउंड इंजीनियर की अंतिम उड़ान है क्योंकि वे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। साथ ही आज रीनो का जन्मदिन है, अनस्तासियो रीनो। वे संत पापा की प्रेरितिक यात्राओं के ईटा एयरवेज के समन्वयक हैं। संत पापा ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और कहा, अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। फ्रांस टीवी के राफेल शापीरा की ओर से पहला प्रश्न था, आपने उदासीनता की निंदा करते हुए लंपेदूसा में अपना परम धर्म पीठीय कार्य आरंभ किया। 10 साल बाद आप यूरोप से एकजुटता दिखाने के लिए कह रहे हैं। आप 10 साल से एक ही संदेश दोहरा रहे हैं, क्या इसका मतलब यह है कि आप असफल हो गए हैं? संत पापा ने कहा, मैं नहीं कहूंगा कि मैं असफल हुआ हूं, लेकिन विकास धीमी गति से चल रही है। आज पलायन की समस्या के प्रति जागरूकता आई है और साथ ही इस बात की चेतना भी है कि यह कैसे एक बिंदु पर पहुंच गया है, गर्म आलू की तरह जिसे आप नहीं जानते कि इसे कैसे संभालना है। संत पापा ने अंजेला मर्केल की बात को याद किया जिसने एक बार कहा था कि इसका समाधान अफ्रीका में जाकर और अफ्रीका में इसे सुलझाकर अफ्रीकी लोगों के स्तर को ऊपर उठाकर किया जा सकता है। संत पापा ने एक लड़के महमूद का उदाहरण देते हुए कहा कि वह यूरोप की यात्रा के दौरान कठिनाइयों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसने यातनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सका और अंत में उसने खुद को फांसी लगा दी। संत पापा ने कहा कि बहुत से लोग जो आते हैं मानव तस्करों के हाथों में पड़ जाते हैं, उन्हें पहले बेच दिया जाता है, फिर वे उनसे पैसे छीन लेते हैं, फिर वे अपने परिवार को फोन पर और पैसे भेजने के लिए कहते हैं। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जो बहुत बुरे हैं, जहां पिंग पोंग की तरह प्रवासियों को वापस भेज दिया जाता है, कई बार उन्हें जेल में रखा जाता है और वे पहले से और भी बदतर हो जाते हैं। इसलिए मैं दोहराता हूं कि सैद्धांतिक रूप से प्रवासियों का स्वागत किया जाना चाहिए, साथ दिया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए और एकीकृत किया जाना चाहिए। यदि आप उसे अपने देश में एकीकृत नहीं कर सकते तो साथ दें और उन्हें दूसरे देशों में एकीकृत करें, लेकिन उन्हें इन क्रूर मानव तस्करों के हाथों में न छोड़ें। एजेंसी फ्रांस प्रेस से क्लेमेंट मेलकी की ओर से दूसरा प्रश्न था, इच्छा मृत्यु पर अपनी असहमति व्यक्त करने के बाद आज सुबह आप इमानुएल मैक्रोन से मिले। फ्रांस सरकार एक विवादास्पद जीवन समाप्ति कानून पारित करने की तैयारी कर रही है, आपने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को इस बारे में क्या बताया और क्या आपको लगता है कि आप उनका मन बदल सकते हैं? संत पापा ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर इस बार बातें नहीं की, लेकिन जब वे उनसे मिलने वाटिकन आए थे तो संत पापा ने स्पष्ट रूप से इस बारे में बातें की और कहा था, जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, ना तो शुरुआत में और ना ही अंत में। हम जीवन से नहीं खेल सकते, यह मेरी राय है, जीवन की रक्षा की जाए। संत पापा ने कहा, आज हमें उन वैचारिक उपनिवेशों से सावधान रहनी चाहिए जो मानव जीवन को बर्बाद करते हैं और मानव जीवन के विरुद्ध जाते हैं। उदाहरण के लिए, आज दादा दादी को दरकिनार किया जाता है और दादा दादियों एवं पोते पोतियों के साथ बातचीत का कोई महत्व नहीं दिया जाता, वे बूढ़े हो गए हैं इसीलिए वे किसी काम के नहीं। संत पापा ने कहा कि हम जिंदगी से खेल नहीं सकते, हर जीवन की रक्षा की जानी चाहिए। एबीसी के जेवियर मार्टिनेज द्वारा तीसरा प्रश्न रखा गया, आपने आखिरी तक यूक्रेन के बारे में बातें की और कार्डिनल जुप्पी अभी बीजिंग पहुंचे हैं, क्या इस मिशन में कोई प्रगति हुई है? संत पापा ने कहा, यूक्रेनी लोग शहीद लोग हैं, उनके पास शहीद इतिहास है, एक ऐसा इतिहास जो उन्हें कष्ट देता है, यह पहली बार नहीं है। स्टालिन के समय उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा, लेकिन हमें उन लोगों की शहादत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें यथासंभव यथार्थवादी तरीके से चीजों को सुलझाने में उनकी मदद करनी होगी। अंत में संत पापा ने सभी पत्रकारों को उनके कामों के लिए धन्यवाद दिया। और रविवार 24 सितंबर को संत पापा फ्रांसिस दिवंगत इतालवी राष्ट्रपति जॉर्जियो नापोलितानो को श्रद्धांजलि देने गए, जिन्हें सीनेट के नर्सिया कक्ष में रखा गया है। वाटिकन प्रेस कार्यालय के एक बयान के अनुसार संत पापा फ्रांसिस ने दिवंगत राष्ट्रपति और उनके परिवार के प्रति अपना व्यक्तिगत स्नेह और आत्मीयता व्यक्त किया, साथ ही इटली के लिए राष्ट्रपति नापोलितानो के उत्कृष्ट सेवा का सम्मान भी था। पूर्व राष्ट्रपति नापोलितानो की मृत्यु के दिन 22 सितंबर को संत पापा ने राष्ट्रपति नापोलितानो की पत्नी को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्होंने राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में दिवंगत राष्ट्रपति की दूरदर्शिता के लिए अपनी सराहना व्यक्त की। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति को सोमवार 25 सितंबर तक सीनेट के नर्सिया कक्ष में रखा जाएगा। मंगलवार 26 सितंबर को 11:30 बजे चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज में उनकी राजकीय अंत्येष्टि की जाएगी। इस वर्ष प्रवासियों और शरणार्थियों का 109वां विश्व दिवस रविवार 24 सितंबर को मनाया गया, जिसका विषय था प्रवास के लिए या रहने का चयन करने की स्वतंत्रता। अपने संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने अलग अलग देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संयुक्त प्रयासों का आह्वान किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी को जबरन प्रवास के लिए मजबूर होने का नहीं, बल्कि अपने देश में शांति और सम्मान से रहने का अधिकार मिले। संत पापा ने अपने संदेश में इन कारणों को खत्म करने के अपने आह्वान को दोहराते हुए कहा कि प्रवासी गरीबी, भय या हताशा के कारण पलायन करते हैं। हमारी प्रतिबद्धता यह पूछने से शुरू होती है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन यह भी कि हमें क्या करना बंद करना चाहिए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।